51वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं,
अर्थे पव्ययमानं तु करणेन विभावितं दापयेत् धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः।
यदि लेख साक्षी आदि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चय हो जाए और कर्जदार कर्ज में लिए गए धन से मुकर जाए तो धनी का वह धन भी वापस दिलवावे और उसकी शक्ति धन आदि के अनुसार कुछ न कुछ दंड भी दे।
अपन अपहनवे अधर्मस्य देहेत्युरक्त्य संसदि अभियोक्ता दिशेत् देश्यम् करणम् वान्य दुष्यत् दिशेत्।
न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा धनी का धन दे दो ऐसा कहने पर यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात करे तो मुकदमा करने वाला धनी साक्षी प्रस्तुत करे और अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे। अप्रामाणिक व्यक्तियों के बारे में कहते हैं,
आदेशम यश दिशति निर्देशापनो हन्ते चन यः यश्चाधरोत्तरानर्थान् विगीतान्नावबुध्यते अपदेश्यान् अपदेश्यं च पुनर्यस्वपधावति सम्यक् प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दितः असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषिते मिथः निरुच्यमानं प्रश्नं च नेक्षेद्यश्चापि निष्पथेत् ब्रूहित्युक्तश्च न ब्रूयात् उक्तं च न विभावयेत् न च पुरवापरं विद्यात् तस्मादर्थान् सहीयते।
ये 53 से 56 तक श्लोकों में बताया है कि जो ऋणदाता झूठे गवाह और गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे और किसी की बात को प्रस्तुत करके कहकर उससे मुकरता है या टोल मटोल करता है, कहीं हुई अगली पिछली बातों को ध्यान में नहीं रखता अर्थात पिछली बातों से अगले का मेल न हो, जो अपने तर्कों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे उनसे फिर जाए, ये सब अप्रामाणिक व्यक्ति हैं, तथा जो पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर नहीं मानता उसे पुष्ट नहीं करता वह भी अप्रामाणिक है। जो एकांत स्थान में जाकर साथियों के साथ घुल मिल कर चुप चुप बात करे, जांच के लिए पूछे गए प्रश्नों को पसंद न करे, ये सब अप्रामाणिक हैं। जो इधर उधर टलता फिरे, कहो ऐसा कहने पर कुछ न कह सके, जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाए, अपूर्व और अपर बात को न समझे अर्थात विचलित हो जाए और प्रार्थना किए हुए धन से हार जाता है अर्थात न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन दिलाए।
साक्षिणः सन्ति मे इत्युक्त्वा देशे इत्युक्तो दिशेन्नयः धर्मस्थः कारणैरेतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत्।
पहले मेरे साक्षी ऐसे कहकर फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा साक्षी लाओ ऐसा कहने पर जो साक्षियों को पेश न कर पाए तो न्यायाधीश इन कारणों के आधार पर भी मुकदमा दायर करने वाले को पराजित घोषित कर दे।
अभियोक्ता न चेत ब्रूयात् वध्यो दण्डस्य धर्मतः न चेत त्रिपक्षात् प्रब्रूयात् धर्मं प्रतिपराजितः।
जो मुकदमा करने वाला पहले मुकदमा दायर करके फिर अपने मुकदमे से के लिए कुछ न कहे तो वह धर्मानुसार सजा के योग्य है और जुर्माना के योग्य है। इसी प्रकार यदि 3 पखवाड़े अर्थात 1.5 मास तक अभियोगी अपनी सफाई में कुछ न कह सके तो कानून के अनुसार वह हार जाता है।
यो वावन्निन्हु
वीतार्थम मिथ्यायावत यावदेत तौनरपेण हृदरमज्ञौ दाप्यौ तद दुगुणम दमम। जो करदार जितने धन को छिपावे, अधिक धन लेकर जितना कम बतावे, अथवा जो कर्ज देने वाला जितना झूठ बोले, कम धन देकर जितना ज्यादा बतावे, राजा उन दोनों झूठ बोलने वालों को जितना झूठा दावा करे किया है, उससे दुगने धन को दंड से दंडित करे।
प्रष्टो अव्ययमानस्तु कृतावस्था धनैषिणा न्यवरै साक्षिभिर्भाव्यो न प्रब्राह्मण सन्निधौ।
धन चाहने वाली मुत्तई के द्वारा मुकदमा दायर करने पर और न्यायाधीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर यदि वह मना कर दे, यह कहे कि मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था, मैं देनदार नहीं हूं, तो उस स्थिति में अर्थी को राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्राह्मण के सामने कम से कम 3 साथियों द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित करना चाहिए।
यदृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः तादृशान् संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः।
साहूकारों अर्थात धन देने वालों को मुकदमे में जैसे साक्षी बनाने चाहिए, उनको और उन साक्षियों को जैसे सत्य बात कहनी चाहिए, उसे मैं आगे कहूंगा।
गृहिणा पुत्रिणो मौला छत्रवित्सु द्रयोनय अर्थयुक्ता साक्ष्यमर्हन्ति न एकेचिद अनापदिहि।
गृहिणा गृहस्थ पुत्र वाले, पहले से वहां निवास करने वाले क्षत्रिय वैश्य और शूद्र व्यक्ति धनी के कहने पर साक्षी हो सकते हैं। आपत्ति रहित काल में हर कोई साक्षी हो सकता है। और 63वें श्लोक में कहते हैं,
आप्ता सर्वेषु वर्णेषु कार्याकारेषु साक्षिणः सर्वधर्म विदो लुब्धा विपरीतांशु तो वर्जयेत।
सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कपटी सब प्रकार धर्म को जानने वाले लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करें, इससे विपरीतों को कभी न करें। साक्षी कौन नहीं हो सकते, 64वें श्लोक में बताया गया है।
नार्थ संबंधिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः न दृष्टा दोषा न कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिता।
धनी से ऋण आदि के लेन देन का संबंध रखने वाले साक्षी नहीं हो सकते, न घनिष्ठ मित्रादि, न सहायक, न अभियोगी के शत्रु आदि, जिनको साक्षी पहले झूठी सिद्धि हो चुकी है वो भी साक्षी नहीं हो सकते, न रोगग्रस्त पीड़ित और न अपराधी दूषित आचरण वाले अधर्मी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं।
न साक्षी न पतिर कार्यो न कारुक कुशीलवो न स्रोतिसो न लिंगस्थो न संगेभ्यो विनिर्गतः।
राजा को कारीगर, नट, भाट आदि की, वेद पाठी को, ब्रह्मचारी को, मोह माया से पृथक हुए सन्यासी की भी साक्षी नहीं बनाना चाहिए।
नाध्ययनी नाप्यधीयो नो न वक्तव्यो न दस्योर न विक्रमकृत न वृद्धो न शिशुर्णैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः।
पूर्णतः आधीन व्यक्ति, नौकर आदि, लोक निंदित, क्रूर कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, बूढ़े को, बालक को, एकाकी घूमने वाले को, नीच अपाहिज को भी साक्षी नहीं बनाना चाहिए।
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो क्षुत्रणो पपिपीडितः न धर्मार्तो न कामार्तो न कुद्धो नापि तस्करः।
न शोकग्रस्त को, न नशे की आदि को, न पागल को, न भूख प्यास से सताए को और न थके हुए को, न कामग्रस्त को, न क्रोधी को, न चोर को साक्षी बनाना चाहिए, साक्षी नहीं बनाना चाहिए।
स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रियः कुर्यात् द्विजानाम साद्रसद्विजाः शूद्राश्च संता शूद्राणाम
अंत्यानाम अंत्ययोनयः। स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्य साक्षी हूँ। अंत्यज कौन होते हैं? चारों वर्ण में जो दीक्षित न होकर वर्ण बाह्य रह जाते हैं वे लोग अंत्यज अर्थात अंत्य स्थानीय कहलाते हैं। 69वें श्लोक में कहते हैं, अनुभावी तु यः कश्चित् कुर्यात् साक्ष्यं विवादिनां अंतर्विस्मरणे वा शरीरस्यापि चात्यये। घर के अंदर एकांत में हुई घटना में अथवा जंगल में एकांत हुई घटना में और रक्तपात आदि से शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में जो कोई अनुभव करने वाला या देखने वाला होता है, विवाद करने वालों का साक्षी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो। श्रियाम संभवे कार्य कार्य बालेन स्थविरेण वा शिष्येण बंधुना वापि दासेन भृतकेन वा। पूर्वोक्त साक्षी न होने पर शिष्येण बंधुना दासेन अपि भर्तकेन कार्यम। कहते हैं बालक, बूढ़े, शिष्य, बंधु, दास और नौकर को भी साक्षी देनी चाहिए जब कोई साक्षी न हो। बाल वृद्धातुराणां च साक्षे सुभजता मृषा जानीयाद स्थिराम वाचम उत्तिक्त मनसा तथा। राजा बालक, बूढ़े और दुखी लोगों की, अस्थिर मन वाले व्यक्तियों की साक्षी में झूठ बोलते हुए अस्थिर वाणी को जान लेवे। साहसेषु च सर्वेषु स्ते संग्रे ग्रहणेषु च वाग्दंडयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः। जितने बलात्कार के काम, चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यंत आवश्यक भी समझे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। बहुत तम परिग्रह ग्रहीत्यात् साक्षिद्वैधे नराधिपः समीचुत समीषु तु गुणात्कृष्टान् गुणै द्वैधे द्विजोत्तमान्। दोनों ओर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष को साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि, महर्षि, यतियों के साक्षी के अनुसार न्याय करें। समक्ष दर्शनात् साक्ष्यम श्रवणाक्षैव सिद्धयति तत् सत्तम भुवान साक्षी धर्मार्थाभ्याम नहीयते। दो प्रकार के साक्षी का होना सिद्ध होता है, एक साक्षात देखने वाले, दूसरा सुनने से। जब सभा में पूछे तब साक्षी सत्य बोले, वे धर्महीन और दंड के योग्य न होंगे। जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग दंडनीय होते हैं। साक्षी दृष्टा दृष्ट श्रुवादन्य ब्रुवान नार्य संसदी अवांग नरकर्मेभ्यति प्रेत्य सुरगाक्ष हीयते। जो राज्यसभा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने में विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक अर्थात जिभ्या के छेदने से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरने के पश्चात सुख से हीन हो जाए। यत्राणिबद्धो पीक्षेत श्रुणयाद्वा किंचन पृष्टस्तत्र तत्रापि यद्ब्रूयात् यथा दृष्टम यथा श्रुतम। प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य साक्षी के रूप में न बुलाए जाने पर भी जहां कुछ भी देखा या सुना हो न्यायाधीश के पूछने पर वहां जैसा देखा या सुना है वैसा कह दे अर्थात न्याय के लिए स्वयं साक्षी रूप में पहुंच जाए। एकोलुब्धस्तु साक्षी स्यात् बहुव्यः सुक्चोऽपि न स्त्रियः स्त्री बुद्धेरस्थिरत्वात् तु दोषौ चान्येऽपि ये व्रताः। लोभ रहित यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक होता है। स्त्रियों के अस्थिर बुद्धि होने के कारण आत्मशुद्धि से युक्त हो और बहुत हो तो स्त्रियां साक्षी के रूप में ठीक नहीं है। जो कोई दोषों से युक्त है वे साक्षी नहीं हो सकते। स्वभावेनैव यद् ब्रूयस् तद्ग्राह्यं व्यवहारिकं अतो यदन्य विब्रूयुर् धर्मार्थं तदपार्थकं। साक्षी के उस वचन को मानना जो स्वभाव से ही व्यवहार संबंधी बोले और सिखाए हुए इन भिन्न भिन्न जो वचन बोले उनको न्यायाधीश व्यर्थ समझे। सभांतः साक्षिणः प्राप्तार अर्थि प्रत्ययथि सन्निधौ प्रांग विवाको न्युञ्जीत विधनातेन संसान्त्वयन्। जब वादी और प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्रांग विवाक अर्थात वकील इस प्रकार से पूछे, यद्वयो रणवोर्वेथ कार्मेश्चेष्टिता मिथ तद्ब्रूत सर्वं सत्तेन युष्माकं यत्र साक्षिता। हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कामों में जो तुम जानते हो उनको सत्य के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इसी कार्य में साक्षी है। सत्यम साक्षी ब्रुवन साक्षी लोको नाप्नोति पुष्कलान इह चानुत्तमाम कीर्तिम वागेशा ब्रह्म पूजिता। जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों को जन्म और पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि यह वाणी है वही वेदों और में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। साक्षीणतम वदन पाशैर वंदते वरुणैर्भृशं विवशः शतमा जाति तस्मात् साक्ष्यं वदेत् द्रतम्। गवाही में झूठ बोलने वाला आदमी प्रत्येक जन्म में वरुण पासों में बंधता है और विवश होकर 100 जन्मों तक इसी प्रकार कष्ट को भोगता रहता है, इसलिए साक्षी को सत्य ही बोलना चाहिए। सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यम् हि वक्तव्यम् सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। सत्य बोलने में साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने में धर्म बढ़ता है, इससे सब वर्ण में साथियों को सत्य ही बोलना चाहिए। आत्मैव भयात्मना साक्षी गतिरात्मा तथात्मना मामवंस्था स्वमात्मानं ऋणां साक्षिणमुत्तमम्। आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जान के हे पुरुष तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपनी आत्मा का अपमान मत कर, अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन और वाणी में है वह सत्य, जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। मन्यते वै पापकृतो न कश्चित् पश्यति तिनः तांस्तु देवा प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तर पुरुषः। हमें कोई नहीं देख रहा है ऐसा पाप करने वाले समझते हैं, किंतु उन्हें देवता देखते हैं और उनका अपना अंतरात्मा ही उनको देखता है।